शांति। हम सबका परम सौभाग्य है जो आदरणीय ललित भाई जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम करतल ध्वनि से आपका बहुत 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 स्वागत अभिवादन अभिनंदन करते हैं। भाई साहब ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेक्रेटरी हैं, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी हैं और अकाउंट्स फाइनेंस टैक्सेशन जो बाबा की सभी संस्थाओं का और पूरे भारत के सेंटर्स का आप देखते हैं सुचारू रूप से। आपने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथ एंड योगा भी किया है। आप चार्टर अकाउंटेंट के साथ साथ लेखक भी हैं, कवि भी हैं, गीतकार भी हैं। आपकी 3 पुस्तकें पब्लिश हुई हैं, सदा स्वस्थ जीवन जो 12 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुई है, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है और सुगंधित पुष्प, ऐसे 3 किताबें भी आपने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गीत भी बनाए हैं। हम क्लास के पश्चात भाई साहब का बनाया हुआ लिखा हुआ गीत जो हरीश मोयल जी ने गाया है वो हम उस पर योग भी करने वाले हैं। भाई साहब के साथ जो हमारे अनुभव है तो उसको कुछ पंक्तियों में लिखा है। भाई साहब आप में ज्ञान की गहराई सेवा का उजास है, सीए की बौद्धिकता दिल में ईश्वरीय ज्ञान है जिसमें समाया है कर्म नीति और आत्मज्ञान। संख्याओं के ज्ञाता है आप पर दिल के बहुत सरल हो, हर निर्णय में है ईश्वरीय मर्यादाओं का संतुलन, व्यवस्था में कुशल विचारों में स्वच्छता, हर व्यवहार में छल के आत्मिक पवित्रता, बोले कम करे अधिक ये उनका है गुढ़ विधान, संयम समर्पण और सूझबूझ की मिसाल है आप, सबका भला हो सब सुख पाए यही आपका महामंत्र है। तो आदरणीय भाई साहब जो अभी गीत बजा है सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, इस पर बहुत सुंदर अपनी भागवत की कहानियां लेकर आए हैं आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। यहां विराजमान आप सभी इस राजयोग के अभ्यास शुरू करने से पहले भी परमात्मा पिता को किसी न किसी रूप में जरूर याद करते रहे होंगे और उनसे जुड़ना, उनको याद करना और उनकी मदद का अनुभव करना वो भी हरेक के जीवन में किसी न किसी रूप में रहा होगा। परंतु जब से बाबा के बने और बाबा को पहचाना, उसके बाद जो बाबा के साथ के अनुभव हैं वो विशेष प्रयोग के रूप में हमने बहुत किए हैं कि अरे जब स्वयं परमात्मा पिता ने हमें सिलेक्ट किया और हम उनके बन गए तो अब तो बहुत खुशियों के साथ जीवन जीना है, क्योंकि सब उसको सौंप दिया है, सौंप दो प्यारे प्रभु को। तो प्रैक्टिकल में सौंप के, प्रैक्टिकल में वो सारा ही हमारा काम करे, ऐसा अनुभव हमने इस अलौकिक जीवन में जिया है प्रैक्टिकली। और उन्हीं अनुभवों के कुछ विशेष कहानियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हो रहा है तो ट्रैफिक कंट्रोल के बात करते हैं। ओम शांति। मैं जो ज्ञान में आया उसकी भी एक विशेष कहानी है। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति तो थी, कथा वार्ताएं सुनना, संतों के कथाओं में जाना, रामायण पाठ करना आदि आदि तो करते थे। हमारा गांव यहाँ माउंट आबू से थोड़ा दूर उदयपुर, आपने नाम सुना होगा, उदयपुर के पास में गांव है। तो वहाँ फिर दसवीं तक वहाँ पूरी पढ़ाई करके फिर उदयपुर आ गए कॉलेज करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए और कॉलेज करने के लिए। तो संडे को घर जाते थे। तो कॉलेज के फाइनल ईयर में थे बीकॉम में, तो घर गए तो माताजी ने हमें समाचार सुनाया कि आपकी सगाई के लिए कोई आया था, कोई लड़की के पिताजी आए थे, पर हमने उनको मना कर दिया कि अभी तो आगे और पढ़ाई पड़ेगा, इसलिए हमने मना कर दिया। अब बात तो आई गई हो गई, लेकिन मेरे मन में विचार चलने लगा कि अभी तक तो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, अब बड़े हो गए, शादी की बात होने लग गई है, तो उस प्रकार के विचार चलने लगे कि गृहस्थ में कैसे रहते हैं, शादी क्यों करते हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे विचार चलते। और फिर जहाँ भी जाते तो थोड़ा उस एंगल से देखते भी थे, क्योंकि अब बात चलने लगी तो मन में भी विचार चलने लगे। तो कहते थे कि भाई सदा खुश रहें इसके लिए शादी करते हैं कि दोनों मिलेंगे सदा खुश रहेंगे। हमने देखा खुश तो रहते हैं लेकिन सदा खुश रहे ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कभी थोड़े बर्तन भी बजते हैं, तो ये सब होता है। तो फिर कहते हैं कि भाई अंत तक दोनों साथ में रहे, कंपेनियन के रूप में एक दूसरे की मदद करें, इसलिए भी शादी करते हैं। तो वो भी मैं देख रहा था, मैंने देखा दोनों में से कोई एक जल्दी चला जाता है, फिर एक बाद में रहता है। तो ये सब विचार चल रहे थे, देख रहे थे। उसी बीच हमारा बीकॉम पूरा हो गया और हम सीए पढ़ने के लिए अहमदाबाद आ गए। तो वहाँ जिस हॉस्टल में हम रहते थे तो एक हमारा एक सीनियर था सीए करने वाला, उसके पास गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सी किताबें थी, बहुत जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती, धार्मिक किताबें। तो हमारे पास टाइम था तो हम पढ़ रहे थे, अच्छा लग रहा था पढ़ते पढ़ते। उसमें गांधी जी की जीवन कहानी भी उसमें रखी हुई थी, तो वो भी मैंने पढ़ी। वो पढ़ने के बाद बहुत मन में हलचल हुई, गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ी, हमने कहा एक साधारण व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को जो है हिला दिया, भगा दिया, और वो भी कोई सेना नहीं, हथियार नहीं, केवल कुछ गुणों के प्रभाव से। हमने कहा जब ऐसा एक साधारण व्यक्ति इतना बड़ा कार्य कर सकता है तो मुझे भी जीवन में कुछ विशेष कार्य करना है, क्या करना है वो नहीं पता, लेकिन कुछ विशेष कार्य करना है, ये मैंने मन में डिसाइड किया। अब सोचने लगा क्या विशेष कार्य करें, अंग्रेजों का तो राज्य है नहीं कि हम आंदोलन करें कोई, तो क्या करें। तो जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते उसमें आया कि भगवान का साक्षात्कार ये सबको नहीं होता है, बहुत किसी किसी को होता है भगवान का साक्षात्कार। तो मुझे भी मन में आया कि बचपन से मैं मंदिर जाता हूं, भगवान की पूजा अर्चना करता हूं, याद करता हूं और सारी दुनिया याद करती है उसको, तो वो कहीं तो होगा, कुछ तो संबंध होगा, कहीं तो उससे मिल सकते होंगे, बस मुझे उसका साक्षात्कार करना है। ये मेरे जीवन का विशेष लक्ष्य है और अब मुझे कैसे भी करके भगवान का साक्षात्कार करना है, ये मन में डिसाइड कर लिया मैंने। अब कैसे हो साक्षात्कार, तो वो जो शास्त्र पढ़ते थे तो उसमें आया कि गुरु मिले, गुरु बनाओ किसी को तो साक्षात्कार जल्दी होता है। तो उस समय में अहमदाबाद में से गुजरात का ही एक बड़ोड़ा करके बड़ा सिटी है, वहां पे मैं ट्रांसफर हो गया था, मैं वहां से कर रहा था सीए। तो वहां फिर मैंने गुरु भी बनाया, फिर गुरु बना के गुरु मंत्र की दीक्षा ली और तपस्या किया कि साक्षात्कार हो जाए। सारा दिन गुरु मंत्र मन में जपता रहता था, सवेरे 3:30 बजे उठ के गुरु मंत्र की 21 मालाओं का जाप करना और ये सब करना, वो सब किया। फिर एक बार गुरु के आश्रम में 7 दिन कमरे में बंद रह के तपस्या की कि साक्षात्कार हो जाए। घर वालों को चिंता हो रही थी कि ये आजकल कुछ ज्यादा ही धार्मिक होता जा रहा है, तो वो और थोड़ा शादी के लिए प्रेशर करने लगे। हमने कहा सीए हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। और इधर मैं तपस्या कर रहा था लेकिन सब करने के बाद भी साक्षात्कार नहीं हुआ। मेरा सीए का एक ग्रुप क्लियर हो गया था और दूसरे का एग्जाम दिया था। मैंने सोचा कि ऐसे साक्षात्कार नहीं होगा, हिमालय में ही जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के। तो वो तैयारी मैंने कर ली कि अभी मैं एग्जाम देने आया था, एग्जाम दिया, फिर मैंने कहा अभी 5-7 दिन में चले जाएंगे सब कुछ छोड़ के। तो उसी समय हमारी ऑफिस में बड़ोड़ा एक बॉम्बे से सीए आया था कोई नया एम्प्लॉय, तो उसने देखा कि मेरे बैग में गीता प्रेस की इतनी बड़ी साधक संजीवनी मतलब गीता की बुक रहती थी। तो वो बोले आपको गीता बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो कि आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहां जाओ ना तो आपको मजा आएगा। और अब मैंने ब्रह्मा कुमारी इसका नाम नहीं सुना, न सेंटर देखा, न किसी को जानता था मैं। अब उसने कहा गीता पाठशाला, मैंने कहा चलो अकेले पढ़ते हैं तो सबके साथ पढ़ेंगे, 5-10 दिन बाद तो वैसे भी जाना है तो सबके साथ मिलके पढ़ेंगे। तो मैं जिन्होंने एड्रेस दिया तो मैं सवेरे 7:30-8 पहुंच गया वहां पे। तो एक छोटा सा कमरा था, एक भाई सामने बैठ के कुछ पढ़ रहे थे, पीछे ये बाबा का फोटो लगा था और 8-10 लोग सामने बैठे थे कमरे में। तो मैंने देखा इनके गुरुजी होंगे तो साष्टांग प्रणाम किया मैंने भी लंबा होके और फिर बैठ गया वहां। तो 5-7 मिनट में वो सत्संग पूरा हो गया, फिर सब गए। फिर मैंने वो भाई को पूछा जो सामने पढ़ रहे थे, मैंने कहा मुझे गीता पढ़नी है तो मैं यहाँ गीता पढ़ने आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ आप आ सकते हैं पर आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने गीता कई बार पढ़ी है, मुझे याद है गीता, मुझे कोर्स क्या करना है? कि नहीं ये थोड़ा नया ज्ञान है तो आपको 1 घंटा रोज आना है, 7 दिन का कोर्स करना है। मैंने सोचा शायद इनको विश्वास नहीं है, तो मैंने संस्कृत में 3-4 श्लोक गीता के उनको सुना दिए। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा है आपको गीता आती है लेकिन ये ज्ञान थोड़ा नया है इसलिए इसका 7 दिन का कोर्स होता है, आप कल से आइए 1 घंटा। अब कोर्स की तो फीस होती है, हमारे पास तो कोई ज्यादा पैसे तो होते नहीं थे उस समय। हमने कहा कितनी फीस है आपके कोर्स की? बोले नहीं कोई फीस नहीं है, केवल आप 1 घंटा आइए सवेरे 8 बजे, हम आपको समझाएंगे पूरा। मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन मैं 8 बजे पहुंचा तो उन्होंने कहा देखो ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जैसे मेडिकल का कॉलेज होता है तो वहां मेडिकल की डिग्री देते हैं, लॉ कॉलेज होता है तो लॉ की डिग्री देते हैं, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो यहाँ डिग्री भी ऐसी दी जाती है देवी देवताओं की। यहाँ जो पढ़ाई पढ़ेंगे उनको लक्ष्मी नारायण जैसी डिग्री देंगे। वहां लक्ष्मी नारायण का 4 फीट का एक बहुत सुंदर सजा हुआ फोटो लगाया हुआ था। तो कहा कि ये डिग्री यहां देंगे पढ़ेंगे तो, यहां पढ़ाई पढ़ने वालों को। अब वो भाई खुद शादीशुदा थे और लक्ष्मी नारायण भी शादीशुदा थे, तो मैंने सोचा कि इनके यहां जो कोर्स करता है उनको शादी करना कंपलसरी है क्योंकि डिग्री वो दे रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई आपका ये कोर्स करेंगे तो शादी करना कंपलसरी है आपके यहां? वो सोचने लग गए भाई। वो बोले देखो आपकी जैसी इच्छा वैसा। मैंने कहा नहीं, मुझे क्लियर करो आप, मेरे को जानना जरूरी है ये, क्योंकि मेरा लक्ष्य था परमात्मा का साक्षात्कार करना और उसके लिए मैं सन्यासी बनने जा रहा था और शास्त्रों में पढ़ा था, संतों के मुख से सुना था कि अगर आपको परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से आपको जल्दी साक्षात्कार होगा। और उस समय तो हम यही समझते थे कि भाई शादी के बाद तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो सकता। तो मैंने गुरु के आश्रम में प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और इस जीवन में शादी नहीं करूंगा। ये गुरु के वहीं प्रतिज्ञा की थी। और यहां ये लक्ष्मी नारायण बना रहे थे तो मैंने कहा ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा नहीं, आप मुझे क्लियर करो कि शादी कंपलसरी है कि नहीं है। वो डॉक्टर थे, बहुत होशियार थे भाई। उन्होंने कहा देखो हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, शादी करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आपकी इच्छा है तो करो, आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं करो, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो केवल ज्ञान सुनाते हैं। मैंने कहा ठीक है ज्ञान सुनते हैं। पहले दिन सुना, आत्मा का लेसन बताया कि आप कौन है, आत्मा का पूरा बताया। अब मैंने जो पढ़ा था कुछ अलग था, यहां कुछ अलग बता रहे थे। फिर दूसरे दिन परमात्मा का बताया, वो भी कुछ अलग। मन में बहुत तूफान उठने लगा कि सच्चा क्या, जो इतने शास्त्र मैंने पढ़े वो या ये बता रहे हैं ये। फिर भी मुझे लगा कि यहां जो ये समझा रहे हैं ना, इसमें एक इक्वेशन है, एक लॉजिक है कि भाई आत्मा ज्योति बिंदु तो आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु, ये भी बात ठीक है। फिर आत्मा अजर अमर अविनाशी तो फिर मन बुद्धि साथ में जाता है, ये भी बात ठीक है। तो बात समझ में आ रही थी लेकिन कंफ्यूजन बहुत हो रहा था कि आखिर सच्चा क्या। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करते हैं कोर्स, सुन तो लेते हैं, इनका पैसा तो देना नहीं है, सुन लेते हैं क्या जाता है। सुनते सुनते जब 5वें दिन सीढ़ी का लेसन कराया, 84 बर्थ का पूरा समझाया, तो उस दिन ज्ञान एकदम क्लियर हो गया माइंड में। ऐसा क्लियर हो गया कि जैसे बादल फटते और कैसे सूरज की रोशनी धरती पर आ जाती है, ऐसे मन के कंफ्यूजन के बादल सारे निकल गए और ज्ञान सूर्य परमात्मा की रोशनी सीधी आत्मा पर आ गई और मुझे वो अनुभव हुआ जो मैं साक्षात्कार करना चाहता था 5-10 सेकंड का। तो मुझे अनुभव हुआ कि साक्षात परमात्मा अब मुझे मिल गया है और वो भी जीवन भर के लिए अधिकार रूप में परमात्मा मिल गया है, ऐसा दिव्य अनुभव हुआ वो 5वें दिन। और उस दिन मेरी भक्ति ऐसे पूरी हुई जैसे इस जन्म में मैंने भक्ति की नहीं हो, ऐसे मेरी भक्ति पूरी हो गई। और अभी मैं और मेरा बाबा वो पूरा अनुभव हो गया। फिर 2 दिन का और कोर्स था, वो पूरा किया। 7 दिन पूरा हुआ, उन्होंने कहा कि आप कल मुरली क्लास में आना। मैं 8वें दिन मुरली क्लास में गया तो जब क्लास पूरा हुआ तो उन्होंने कहा आप सामने आके परिचय दीजिए अपना। अब चूंकि ज्ञान मेरे माइंड में पूरा क्लियर हो चुका था तो मैंने परिचय में भी यही बताया कि ये शरीर का नाम ललित है, अभी CA पढ़ाई कर रहे हैं, आगे फिर जैसे बाबा कहे वैसे करेंगे, ऐसे परिचय दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या, अभी ये ज्ञान मिल गया, अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या। तो मैंने उस समय से भी बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ मैंने कहा कि इस जीवन में अब जो मुझे करना है पुरुषार्थ, तो सतयुग के पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ जो उनका प्रिय सखा है ना, जो सारा दिन श्री कृष्ण के साथ रहता है, वो पार्ट मुझे प्ले करना है। और उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा कि वो पार्ट मुझे मिले और वो पार्ट मैं प्ले करूंगा श्री कृष्ण के सखा के रूप में। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, करिए पुरुषार्थ। तो वो जीवन में लक्ष्य रख के मैं आगे बढ़ा। अब मैं सोचता था कि मैं तो पाठशाला में क्लास कर रहा हूं, अब श्री कृष्ण बने जो सारी विश्व की सेवा की, तब उनको श्री कृष्ण का पाठ मिला, तो श्री कृष्ण का सखा भी सारे विश्व में सेवाधारी बनेगा, विश्व की सेवा करेगा, तब तो वो श्री कृष्ण के सखा का पाठ मिलेगा, बाकी कैसे मिलेगा। तो मैं बाबा को कहता था योग में, बाबा सारे दुनिया की सेवा करनी है मुझे, कैसे करनी है मुझे नहीं पता, मैं अभी तो पाठशाला में क्लास कर रहा हूं, लेकिन मैं कठपुतली हूं, आपको जैसे नचाना हो आप नचाना, जो कराना हो आप कराना, लेकिन मुझे वो पार्ट प्ले करना है, तो आपको जैसा कराना हो। अब लक्ष्य पक्का था, मन में विश्वास था, तो बाबा ने पाठशाला से सब सेंटर, सब सेंटर से सेंटर, सेंटर से सब जोन, सब जोन से जोन, और जोन से मधुवन में बिठा दिया सेवा के लिए। ये लक्ष्य का फायदा, जो मधुवन तक सेवा में मुझे बिठा दिया। अच्छा, मधुवन में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा में बिठाया, जहां की पूरे भारत की बहनें अकाउंट्स चेक कराने के लिए आती थी। मुझे इतना नशा चढ़ता था कि लोग देवियों के दर्शन करने के लिए कहां कहां जाते हैं, पैदल जाते हैं, भूखे रहते हैं, तपस्या करते हैं, तब कहीं देवियों का आधा मिनट का एक मिनट का दर्शन होता है। और मैं कितना भाग्यशाली हूं जो सारे भारत से देवियां दर्शन देने के लिए मेरे सामने आती है, कितना बड़ा भाग्य है जो मेरे सामने आके बैठती है, दृष्टि देती है। मैं जब अकाउंट चेक करता था तो खास बहने योग करती थी कि इनको भूल नहीं मिले कोई, तो क्योंकि इतना दृष्टि देती है बहने, कितना बड़ा भाग्य है मेरा। तो ऐसे नशा चढ़ता था, खुशी रहती थी, सदा मुस्कुराहट रहती थी। फिर इधर मैं सीए कर रहा था, अब दो ग्रुप क्लियर हो गया, अब दो का एग्जाम बाकी था। मैंने कहा क्यों करने का सीए, जब भगवान मिल गया, जिसके साक्षात्कार के लिए मैं हिमालय में जाने वाला था, वो स्वयं साक्षात्कार साक्षात रूप में मिल गया, अब सीए क्यों करने का। तो मैंने बहन जी को कहा, बहन जी अभी मुझे सीए नहीं करने का है, आप सेवा में लगा दो मुझे। तो बहन जी ने कहा सेवा ही करनी है ना, तो मैंने कहा हाँ अब सेवा ही करनी है। तो बहन जी ने कहा देखो, साधारण सेवा जो भी है, जनरल सेवा, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो सीए वाली सेवा है वो सीए ही कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं कर सकता उसको। इसलिए आप ये समझो कि बाबा को आपकी डिग्री से कोई सेवा लेनी है, तो पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इन्वेस्ट हो रहा है टाइम, और बाबा आपकी डिग्री से सेवा लेगा, तो बाबा आपको पढ़ाना चाहता है, आप पढ़ो और डिग्री लो। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा के कमरे में गया और बाबा को बोला, बाबा मुझे कोई पद पैसा पोजीशन नहीं चाहिए, इस डिग्री से आपको कोई सेवा लेनी हो तो आप मुझे डिग्री दिला देना, मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी आप डिग्री दिला देना। ये मैंने बाबा को बोल दिया। मैं जब से ज्ञान में आया, दो चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरह पकड़ के रखा। पहला था कि कोई भी काम हो, चाहे घर लौकिक परिवार से हो, अलौकिक परिवार से हो, ऑफिस से हो, फ्रेंड से हो, कहीं से भी कोई भी काम सौंपता तो बाबा के रूम में जाके बाबा को बोल देने का कि बाबा ये सेवा मिली है, ये काम मिला है। और बोलने का मतलब ऐसा नहीं बाबा की फोटो लगी है तो उसके सामने बोलने का, जैसे आपके सामने बैठ के कैसे बोल रहे हैं, ऐसे अपने पिताजी बैठे हैं और पिताजी को हम बात शेयर कर रहे हैं कि बाबा ये एक काम मिला है, ऐसे उनको शेयर कर देने का बस, फिर निश्चिंत हो जाने का। जैसे सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, तो वो बाबा को सौंप देने का कि बाबा ये काम करना है। दूसरा, हर काम करने का बहन जी को पूछ के करने का, जो निमित इंचार्ज हैं उनसे राय सलाह करके उनकी श्रीमत लेकर करने का। शिव बाबा निराकार है, उनसे हमको डायरेक्ट डायरेक्शन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं पता नहीं, लेकिन बाबा ने बहनों को निमित बना के बिठाया है, तो बहनों को पूछ लेने का, बहन जो कहे वो कर लेने का। कुछ गलती हो गई, उसमें कुछ नुकसान हो गया, तो बहन जवाबदार, बाबा जवाबदार। हमने तो श्रीमत ली और श्रीमत के अनुसार किया, तो हम तो फ्री हो गए। तो मैं फ्री रहता था, बहन को पूछ लिया, बहन ने जो कहा वो कर लिया, तो मैं निश्चिंत रहता था। तो ऐसे बाबा को बता दिया कि बाबा ये डिग्री दिलानी है तो आप दिला दो। अब मैं अहमदाबाद में जहां रहता था, मैं और मेरा एक कजिन, वो दोनों किराए के मकान में रहते थे। मैं ज्ञान मिलने के बाद बड़ौदा से फिर अहमदाबाद आ गया और नौकरी ज्वाइन कर ली, सीए थोड़ा बाकी था। तो मेरा कजिन जो है वो 14 घंटे 12 घंटे बैठकर नोट्स बनाना पढ़ना, सीए कर रहा था तो उतनी पढ़ाई करनी पड़ती थी क्योंकि उस समय रिजल्ट भी जो है बहुत कम रहता था। मैं अमृत वेले का योग किया, फिर मुरली क्लास में गया, फिर सेवाएं की, फिर जॉब भी था मेरा, जॉब किया, शाम को आता था, फिर भोजन बनाना, अपना भोजन बनाया खाया, फिर रात को बिस्तर पर सोए सोए वो किताब हाथ में लेके पढ़ता था। उस समय हमारे सजेस्टेड हुआ करते थे 10 वर्ष के क्वेश्चन आंसर के, वो बुक रहती थी, तो वो सोया सोया मैं पढ़ता था। कब नींद आ जाती, बुक साइड में गिर जाती, मैं सो जाता था। तो वो मेरा कजिन मुझे कहे कि ललित, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, तू सीए में पास नहीं हो सकता, कि मैं यहां 12-14 घंटा बैठ के स्टडी कर रहा हूं, तू कब आता है सो जाता है, ऐसे कोई सीए पास होगा क्या? मैंने कहा देखो भगवान की जो मर्जी है हो जाएगा। अब हर 6 महीने में एग्जाम होती थी, तो 6-6 महीने में मैंने दिया 2 एग्जाम, मैं पास हो गया। दोनों ही एग्जाम में मैं पास हो गया, सीए हो गया। मेरे बाद उसने करीब 6 बार और एग्जाम दिया, उसके बाद वो पास हुआ वो फ्रेंड, और बाबा ने मुझे जो है डिग्री दिला दी। अब इसमें कोई कृपा नहीं थी बाबा की, लेकिन ये राजयोग का कमाल था। जब हम राजयोग का अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारे मन से नेगेटिव और वेस्ट ये थॉट्स जो है धीरे 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 कम होने लगते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और पॉजिटिव थॉट्स जो है, हमारी एटीट्यूड, हमारे थॉट्स सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। और उसके कारण से जो हम पढ़ते हैं, एक बार भी पढ़ा वो याद रहने लग जाता है। अच्छा, याद रहने के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो 3 घंटे का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में वो फाइल ओपन हो जाए जो हमने पढ़ा हुआ था और जो क्वेश्चन आया है। क्या है, हजारी फाइलें पड़ी हुई है, लेकिन उस अलमीरा में से वही फाइल निकले वो जरूरी है। तो मन में सीए पढ़ने वाला सब कुछ पढ़ लेता है, यहां सब स्टोर होता है, लेकिन उसमें वो एग्जाम में पेपर देखने के बाद वही फाइल ओपन हो जाए, वो मदद वहां मिल जाती है जब मन शांत हो जाता है। तो यही मदद मुझे मिली। तो बाबा को बाजू में बिठाता था, बाबा चलो एग्जाम पेपर लिखना है, तो बाबा वो फाइल ओपन करवा देता था और हो गया पास। तो इस प्रकार से सीए पास हो गया। पर घर वालों को पता चला कि ये आजकल कोई ब्रह्मा कुमारी में जाने लगा है। अब ब्रह्मा कुमारी उन्होंने कभी देखा नहीं था, गांव में थे, तो इन्होंने इधर उधर से पता किया तो उनको नेगेटिव बातें सुनी कि आपके लड़के को ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो उनका और विरोध बन गया, अब इसकी जल्दी से जल्दी शादी करें, तो वो प्रेशर बनने लगा। शादी का बहुत बड़ा पेपर आया, क्योंकि जब उनका बहुत विरोध था, इतना विरोध होता था पिताजी का कि एक बार मैं घर गया तो घर पे सभा इकट्ठी हो जाती थी जब मैं गांव जाता था, तो मेरा ज्ञान सुनने के लिए नहीं, मुझे समझाने के लिए कि देखो गृहस्थ में रहना चाहिए, राम ने भी शादी की थी, कृष्ण ने भी शादी की थी, वो ऐसे सब समझाने के लिए घर में इकट्ठा हो जाते थे। मैं शांति से सुनता था, मुस्कुराता था। एक बार पिताजी ने कहा बोल अब तेरी क्या इच्छा है, फाइनल क्या करना है? मैंने कहा देखो पवित्र जीवन जिएंगे, आपकी सेवा करेंगे, तपस्या करेंगे। पिताजी का आज के बाद गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा, गांव में पैर नहीं रखेगा तू, इतना मतलब विरोध था। आपने बहनों के लिए सुना होगा बांधेलियों का पार्ट होता है, मेरा 7 साल बांधेला का पार्ट था, 7 ईयर्स मेरा बांधेला का पार्ट था। सेंटर पर नहीं जाने का, मेरी दादी मेरे साथ रहती थी, फिर अहमदाबाद में सेंटर नहीं जाने का, सेंटर गए तो झगड़ा करने का बहन जी के साथ, ये सब पार्ट चला था। लेकिन हम मुस्कुराते रहते थे कि जिस दिन इनको भी बाबा का ज्ञान मिलेगा ये सहयोगी हो जाएंगे, वो मुस्कुराते रहते थे। एक बार ये शादी के चक्कर को ही लेके मैं जब गांव गया तो मुझे कहा कि एक जगह जाना है, मुझे बताया नहीं कहाँ जाना है, एक जगह जाना है। मैंने कहा चलो। तो हमारे समाज के गुरु होते हैं एक राम स्नेही संप्रदाय के, रामदयाल जी महाराज, तो उनका सत्संग चल रहा था 50 किलोमीटर दूर, तो बस में ले गए मुझे। फिर मुझे पता चला कि ये गुरु के पास ले जा रहे हैं। शाम को 4-5 बजे का टाइम था, गुरु अपने कमरे में बैठे थे, वो कटोरी में अनार दाने लेके वो खा रहे थे चम्मच से। तो हमारे एक रिलेटिव कमरे में ले गए, तो सबने प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम करके बैठ गए। वो यहाँ सोफे पर बैठे थे सामने, तो वो रिलेटिव ने कहा कि ये फलाने गांव से आए हैं, ये लड़के ने सीए किया है लेकिन ये शादी नहीं कर रहा है, घर वाले बहुत परेशान है, आप इनको थोड़ा समझाओ। तो गुरुजी ने मेरे सामने देखा, कहा क्या नाम है, मुझे पूछा। तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है। अब जैसे ही मैंने कहा शरीर का नाम ललित है, उन्होंने कटोरी वहां रख दी टेबल पर नीचे, क्योंकि ये जवाब तो आज दिन तक किसी ने नहीं दिया उनको। कहा अच्छा, आत्मा का क्या नाम है। मैंने कहा गुणवाचक कुछ भी कह दीजिए, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। क्या करते हो। मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करता हूं। उनकी आंखों में चमक आ गई। अच्छा, ब्रह्मा कुमारीज में, अरे आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, आपकी तपस्या तो बहुत अच्छी है, आपका तो निर्मल जीवन है। कि आबू रोड में भी मेरी भागवत कथा थी तो बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी आए थे, मेरे को शॉल पहना के स्वागत, मेरा अभिनंदन किया। और आप लोगों का जीवन तो सचमुच तपस्वी जीवन है, बहुत अच्छा गुण धारण करते हैं, मेरी महिमा करने लगे। मेरे पिताजी सोचे ये ट्रेन कोई दूसरे ट्रैक पे चढ़ गई अभी। तो कहा गुरुजी को, कहा कि महाराज ये शादी नहीं कर रहा है, घर में सबसे बड़ा लड़का है, तो समाज वाले ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, आप इसको कुछ कहो। तो उन्होंने कहा, पिताजी से पूछा वो महाराज ने, अच्छा ये बताओ कि इसमें कितने अवगुण है। पिताजी ने कहा कि नहीं, अवगुण तो नहीं है। अच्छा, इसके कितने दोस्तों में इसके जितने गुण है। तो पिताजी ने कहा गुण बहुत है इसमें तो, क्योंकि हमने कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया, केवल ये एक पॉइंट के अलावा, शादी के अलावा और कोई शिकायत का मौका नहीं दिया उनको, सारी सेवा करते थे, सब कुछ करते थे। तो उन्होंने कहा देखो, पिताजी को समझाया, माताजी पिताजी दोनों थे, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके घर में योगी ने जन्म लिया है, फिर भी वो आपके घर में रह के सेवा कर रहा है। योगी तो उड़ते पंछी होते हैं, ये घर छोड़ के चला गया होता तो आप क्या करते, क्या कर लेते आप इसका, पर ये योगी होते हुए आपकी घर में रह के सेवा कर रहा है, आप इतने भाग्यशाली हो। फिर एक और बात जबरदस्त उन्होंने कही, उन्होंने कहा देखो मैं घर से भाग के आया हुआ हूं, मैं खुद घर से भाग के आया हुआ हूं और आप लोग मेरी पूजा करते हो, मेरा झूठा खाते हो, मेरी पूजा करते हो, और ये तो आपके घर में रह के सेवा कर रहा है योगी बन के, तो आपको तो बड़ा नाज होना चाहिए इस पे। ऐसा उन पिताजी को समझाया। फिर मेरे को कहा आज आप रुकोगे यहाँ, रात शाम को सत्संग होगा, आप रुकेंगे। मैंने कहा भले रुक जाएंगे। पिताजी बोले नहीं नहीं, बहुत जरूरी काम था ये तो आपसे मिलने के लिए। उन्होंने सोचा कहीं यही नहीं रह जाइए, तो कहा नहीं हमको तो जाना है, ऐसा करके फिर घर ले गए, वो चले गए। तो इस प्रकार से पेपर आते थे, तो लड़के वाले बहुत आते, क्योंकि गांव में पहला सीए में हुआ था, तो बहुत आते थे, घर वाले भी परेशान। अब मैंने ये कह रखा, उन्होंने जब कहा तो मैंने ये बहाना दिया, मैंने कहा कि जब ऐसी कोई पवित्र जीवन जीने वाली लड़की मिल जाएगी तो शादी कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें साधु संन्यासी बनना निषेध जैसा है, मतलब किसी को वो प्रमोट नहीं करते हैं। ये हमारे जैन समाज वाले बैठे हैं, इनको तो बहुत वो उत्सव होता है जब कोई साधु संन्यासी बनने जाता है, तो बहुत प्रोग्राम होते हैं, बहुत जुलूस निकलता है और उनकी बड़ा मान शान होता है। लेकिन हमारा जो समाज है उसमें उसको ज्यादा वो, तो मैंने सोचा जब लड़के को ही साधु बनने का परमिशन नहीं है तो कोई ऐसी लड़की तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो मैंने बहाना लगा दिया कि ऐसी कोई लड़की मिलेगी तो शादी कर लेंगे, पवित्र जीवन जीने वाली, बाकी नहीं। तो कोई भी आता था, मेरे से भी डायरेक्ट पूछने आता था कोई लड़की का पिताजी, तो मैं यही कहता था भाई हम तो ब्रह्मा कुमारीज में जाता हूँ, पवित्र जीवन जीना है, ये करना वो करना, ऐसे समझाता था तो सब चले जाते थे। अहमदाबाद में ऐसे एक बार एक भाई आया मुझसे मिलने उनकी लड़की के लिए, तो मैंने यही कहा कि भाई हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ये वो सब, तो वो चला गया। फिर एक प्रोग्राम था हमारा, पारिवारिक प्रोग्राम था, कोई कार्यक्रम था, तो मैं भी वहां गया हुआ था, मेरे पूरे परिवार के इकट्ठे हुए थे। तो वहां मेरे रिलेटिव, मेरे मामा जी और जीजा जी और वो आके बोले चलो लड़की देखने जाना है। मैंने कहा कहां लड़की देखने जाना है? कि नहीं तेरे लिए लड़की देखने जाना है। मैंने कहा क्यों ऐसी बात कर रहे हो आप? तो कि नहीं वो अहमदाबाद में एक भाई तेरे से मिलने आए थे ना थोड़े दिन पहले। मैंने कहा हाँ आए थे। तो वो आए हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पास में उनका दूसरा शहर है छोटा सा, तो वहां देखने जाना है। मैंने कहा कि आपने पूछा उनसे मैंने जो बात की थी? तो कि हाँ उनको सब मंजूर है इसलिए उन्होंने लड़की देखने जाना है। अब मैं फंस गया अपनी बात से, क्योंकि मैंने ये कहा था कि भाई ऐसी कोई जीवन जीने वाली लड़की मिलेगी तो मैं शादी कर लूंगा। अरे वो आ गया भाई तो उनकी लड़की के लिए, अब मैं फंस गया था, अब मुझे जाना पड़ा जबरदस्ती। अब मैं गया, अब मन में तो कोई संकल्प ही नहीं, लेकिन अब चूंकि मेरे शब्दों से ही मैं बंध गया था तो मुझे जाना पड़ा। गया उनके घर, गए बैठे, वो थोड़े वो लाए थे वो स्वीट नमकीन सब वो सब रखे, तो वो उन लोगों ने बात किया वो लड़की से सब। फिर 15-20 मिनट हुआ और फिर कहा अच्छा हम जाते हैं, जो मेरे साथ मेरे रिलेटिव आए थे बोले हम जाते हैं। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये समझ लेगी कि मेरे को भी मान्य है, मंजूर है, हाँ है मेरी कहीं ऐसा। मैंने कहा कि मुझे अकेले में मिलना है ये लड़की से, बात करना है। तो पास में गार्डन था, वहां जाके उसको पूरा समझाया। मैंने कहा देखो मेरा जीवन तो ऐसा है, पहले से सन्यासी जैसा जीवन है, पवित्र जीवन जीने का मैंने जीवन में लक्ष्य किया हुआ है, प्रतिज्ञा ली हुई है, ये वो सब समझाया। मैंने कहा आप है ना आपके पिताजी को मना कर देना कि लड़का बहुत लंबा है, नहीं सेट होता, ऐसे करके आप मना कर देना। ऐसे करके हम निकल गए फिर वहां से। मैंने सोचा मना कर दिया होगा। थोड़े दिन बाद हुए, फिर वो भाई जहां मैं जॉब कर रहा था वहां आ गया वो लड़की का पिताजी, तो कहा कि मुझे आपके पिताजी से मिलना है। मैंने कहा क्यों क्या काम है? तो कि वो आगे बात करनी है, डेट डिसाइड करनी है। मैंने कहा कि आपकी लड़की ने हाँ बोला? तो कि हाँ बोला तभी हम आए। मैंने कहा हमारे पिताजी तो एक मेले में गए हुए हैं, वो 8-10 दिन बाद आएंगे और तब आपको बता देंगे। फिर मैंने कहा आपका जरा फोन नंबर दो घर का, क्योंकि उस समय लैंडलाइन हुआ करती थी, और वो लड़की का नाम भी पूछा, फोन नंबर भी लिया। जब वो गए तो फोन किया, मैंने कहा आपके पिताजी मिलने आए थे? तो कि हाँ वो आने वाले थे। मैंने कहा आपने हाँ बोला? मैंने कहा ऐसा तो नहीं पिताजी जबरदस्ती कर रहे हो? तो मैंने कहा आपने हाँ बोला? तो कि हाँ मैंने हाँ बोला। मैंने कहा मैंने इतना समझाया आपको, पर मैं क्या पवित्र जीवन शब्द बोल रहा था अभी। मैंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का, ये करने वो सब। तो कि हाँ वो तो मैं समझ गई थी, अच्छा है ना ऐसा जीवन भी अच्छा है। मैंने कहा ये तो मुसीबत हो गई, गले पड़ गई है तो अब क्या करें। मैंने कहा देखो आप जल्दी नहीं करो, एक बार हम वापिस मिलते हैं बात करते हैं फिर आगे का देखेंगे। फिर मैंने उसको बुलाया एक जगह, हम मिलने गए, मिले उसको एक घंटा मैंने खूब समझाया। फिर जहां मैंने वो 7 दिन का कोर्स किया था वहां ले गया उसी समय वहां, तो वो भी माता जो थी उसने भी बहुत समझाया कि ये तो ललित तो बिल्कुल सन्यासी है, ना तो इसको खाने का शौक है, ना इसको पहनने का शौक है, ना कहीं घूमने का शौक है, इसने तो जीवन में पहले ही सन्यास लिया हुआ था, तेरा तो ऐसा लक्ष्य नहीं है, तू कैसे जिएगी? ये तो जी लेगा क्योंकि इसका तो लक्ष्य ही वो है, तू कैसे जिएगी? ऐसे करके बहुत समझाया उसको। फिर मैं उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो लास्ट में वो यही बोले कि मेरे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं है। अब तो मैं फंस गया पूरा। मैंने कहा अब क्या किया जाए? मैं बाबा को इतना याद करूं, इतना याद करूं कि बाबा भक्ति में कहते हैं कि तूने द्रौपदी की लाज बचाई, अब वो तो बचाए कि नहीं बचाए, अभी मेरी बचा ले, ये मुसीबत से मुझे छुड़ा इससे कैसे भी करके। मैं इतना याद करूं बाबा को, इतना योग करूं। फिर थोड़े दिन हुए, फिर हमारे पिताजी का मैसेज आया कि हमने मामा जी के यहाँ मीटिंग रखी है, आगे का सब फाइनल करने, तू आ जाना। अब मैं, मेरा कजिन जो मेरे साथ सीए कर रहा था उसको लेके गया। मैंने कहा भाई तू तो मना कर दे कम से कम, तू मेरा जीवन जानता है, मेरा लक्ष्य जानता है, फिर तू क्यों ये करता है। लेकिन वो भी तो यही चाहता था कि हाँ मेरी शादी हो, तो वो भी जो है मेरे को कुछ नहीं कहता। फिर वहां जाके बैठे, अब मैं बाबा को इतना याद करूं। हाँ उसके पहले एक घटना घटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताने। जब वो वहां फंक्शन में वो आए थे ना मुझे बुलाने के लिए, उसके एक रात पहले मेरे माताजी मामी जी वो सब मेरे को कहे एक जगह जाना है। वो मेरे को पहले बताते नहीं थे कहाँ जाना है, एक जगह जाना है। मैंने कहा ठीक है, गए हम। वो हमारे एक रिलेटिव का घर था, तो उनके पिताजी ने कुछ वर्षों पहले शरीर छोड़ा था, वो उनके बहू के शरीर में वापिस आते थे। जैसे नहीं परिवारों में आते हैं कोई पूर्वज आते हैं ऐसे, तो वो उनके बहू के शरीर में आके बोलते थे, सलाह देते थे। किसी का बिजनेस नहीं चलता था तो उसको सलाह देते थे, किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उनको सलाह देते थे। आत्मा के रूप में वो उनके शरीर में आके देते थे। तो वो मुझे लेके गए, फिर मैं समझ गया कि ये मुझे यहाँ लेके आए हैं। तो मैंने कहा बाबा इनमें आत्मा आएगी और आप परमात्मा हो, आप ही कुछ करना यहाँ कमाल, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकूंगा, अब आप कुछ करना और कुछ इसमें मुझे रास्ता दिखाना। तो उनका आह्वान किया, वो आत्मा उस शरीर में आई। मैं बाबा को आह्वान कर रहा था, बाबा आप देख लेना संभाल लेना सब। तो वो आए, फिर जब उनको पूछा तो हमारे मामी जी का, ये ललित है घर में बड़ा है, शादी नहीं कर रहा है, इसको आप थोड़ा कुछ कहो, ये वहां जाता है। तो उसने कहा कि ये जहां जाता है वो भगवान का कार्य है, उसको रोकना नहीं। उस आत्मा ने कहा उनके द्वारा कि इसको रोकना नहीं, अच्छे कार्य में जाता है, पर कि ये शादी नहीं करता है, इसका कुछ आप करो। तो उन्होंने कहा देखो मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मन बदलने की। तो मुझे गेहूं के 5-6 दाने दिए, कहा कि 6 महीना तक इसको अपने साथ रखना, इसमें से एक भी दाना गिरा दिया तो मैं तेरे को बीमार कर दूंगा, अपने साथ रखना। और उन सबको कहा कि मैं कोशिश करूंगा, मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि इसका मन बदल जाए। तो रात को तो वो बात हुई और दूसरे ही दिन वो लड़की देखने के लिए बुलाने आ गए। तो घर वाले तो सब समझे कि हाँ उसकी बात सच्ची हो गई अभी। तो लास्ट में जब वो मीटिंग चल रही थी हमारे परिवार की, तो पिताजी ने मेरे कजिन को, मैं बाबा को बहुत याद करूं, बाबा आज फाइनल होने वाला है, आज बचा देना कैसे भी, मैं जिंदगी में भूल नहीं करूंगा, मैं जिंदगी में कोई बहाना नहीं दूंगा, बस आज बचा ले, कैसे भी करके आज बचा ले, नहीं तो गजब हो जाएगा। तो पिताजी ने वो कजिन को पूछा कि अब इसकी क्या इच्छा है, क्योंकि मेरे पर तो गुस्सा करते थे तो मेरे को नहीं पूछा, वो कजिन को पूछा क्या। तो कजिन ने कहा देखो इसने तो कहा ही है कि ऐसी लड़की मिलेगी तो शादी कर लेगा, लड़की भी तैयार है, अब आपकी क्या इच्छा है आप देख लो। तो पता नहीं, जैसे एक भक्ति में नहीं आता है कि रावण और वो कुंभकर्ण और सबने तपस्या की थी, तो कुंभकर्ण को इंद्रासन चाहिए था, तो अब देवताएं सोचे भाई ये इंद्रासन ले लेगा कहीं, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कहा कि तुम इसकी जीप पर बैठ जाना, तो जीप पर बैठ गए। तो जब शिव जी ने पूछा कुंभकर्ण को, बोल तेरे को क्या चाहिए, तो बोले निद्रासन चाहिए, इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल दिया, तो इंद्रासन बच गया। तो मैं भी बोला बाबा कुछ कर दे अभी, चमत्कार कर दे आप भी। तो पिताजी ने कहा कि जब इसको ऐसा ही जीवन जीना है तो ये अकेला ही बहुत है, दो को लाके क्या करेंगे। हमने कहा थैंक यू बाबा आपने लास्ट मोमेंट पर बचा लिया मेरे को। फिर वो शादी वाला चैप्टर जो है वहां पूरा हो गया, उसके बाद वो बात कभी नहीं निकली। लेकिन पिताजी का गुस्सा तो था मेरे पर। मेरे से छोटी 2 बहनें थी, एक की शादी पिताजी ने करवा दी, दूसरे के लिए लड़का देख रहे थे तो कोई सेट नहीं हो रहा था। तो जब एक बार मैं घर पे गया तो मेरे पे गुस्सा किया कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता, अब इसके लिए लड़का ढूंढना और इसका शादी का सारा खर्चा करना तेरे ऊपर है। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर बाबा के कमरे में गया और बाबा को बोला बाबा ये पिताजी ने काम सौंपा है। मैं तो जैसे सब सौंप देता हूं ना बाबा को, बाबा को बोला पिताजी ने ये काम सौंपा है कि लड़का भी ढूंढना है और शादी का पैसा भी इकट्ठा करना है, आपको जैसे कराना हो। और मैं सौंप के निश्चिंत हो जाता हूं, फिर मैं उस पर सोचता नहीं हूं, क्योंकि भगवान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना तो एग्रीमेंट साइन करता हूं, तो भगवान के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया। वो एग्रीमेंट की कंडीशन ये है कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, जो भगवान कहेंगे वो मैं करूंगा, मेरा जो छोटा मोटा कुछ काम है वो आप कर देना, ये भगवान के साथ एग्रीमेंट साइन किया। तो ऐसा जो भी काम आता था तो बाबा को बोल देता था। अब मैंने बोल दिया बाबा को, मैं अहमदाबाद में जॉब करता था उस समय, मुझे दीदी ने कहा, सेंटर पर गया तो दीदी ने कहा कि मधुबन से लेटर आया है, 15 दिन अकाउंट सेवा में आपको बुला रहे हैं, आप जाएंगे? मैंने कहा अरे ये तो लॉटरी मेरे लिए, जरूर जाऊंगा मैं। तो कहा मैं लिख दूं? हाँ। मैंने कहा लिख दो आप। मैं ऑफिस गया, एप्लीकेशन लिखी, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे बॉस को दी, बोले नहीं मिलेगी छुट्टी। मैंने कहा मेरे लिए लॉटरी है, बहुत जरूरी है जाना। बोले नहीं, तूने कहीं नौकरी दूसरी ढूंढ ली होगी, वहां ट्रायल के लिए जा रहा है और यहाँ छुट्टी ले रहा है। मैंने कहा मैंने कोई नौकरी नहीं ढूंढी, मुझे सेवा में जाना है। बोले नहीं मिलेगी। मैं अपनी केबिन में गया, मेरा रेजिग्नेशन लेटर लिखा और इस्तीफा ला के दे दिया कि ये आपकी नौकरी, मुझे नहीं करनी है आपकी नौकरी। बोले पागल हो गया, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहा है। मैंने कहा मुझे और नौकरी मिल जाएगी, मुझे अभी सेवा में जाना है। उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया, मैं आबू आ गया। 15-20 दिन यहां सेवा की, फिर वापिस अहमदाबाद गया। अब जॉब तो चली गई थी, छोड़ दी थी जॉब, तो किराए के कमरे में रहता था, किराया भी देना था और अपना खर्च भी होता था, मेरा बैंक बैलेंस 0 रहता था, जो सैलरी आती थी वो यूज में सेवा में सब में खर्च हो जाती थी, और बहन की शादी का खर्चा करना, तो ऐसे स्थिति ये आ गई थी कि कुछ भी नहीं हाथ में और सब कुछ करना था। लेकिन मैं निश्चिंत था कि भगवान का काम है, भगवान कराएगा। तो मैंने दीदी को पूछा कि दीदी अभी 3 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं अहमदाबाद में दूसरा जॉब ज्वाइन करूं, या मैं फॉरेन में कहीं जॉब के लिए ट्राई करूं, या अपना खुद का CA का ऑफिस करूं, आप जो कहेंगे वो मैं कर लूंगा। तो दीदी ने कहा अपना खुद का CA का ऑफिस करो। अब मैंने कहा ना जो दीदी कहती मैं कर लेता था, आंख बंद करके, वो कहते ये तेल का डिब्बा यहां गिरा दो तो गिरा देने का, वो सोचने का नहीं ये कपड़े खराब हो जाएंगे। दीदी ने कहा ना कर दो बस, ये मेरा जीवन का सिद्धांत रहा कि भाई दीदी बोले वो बाबा बोला। तो दीदी ने कहा खुद का ऑफिस करो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने सोचा ऑफिस करने के लिए ऑफिस किराया लेने का, फर्नीचर करने का, ऑफिस की डिपॉजिट देने का, पैसा तो है नहीं अपने पास, ये सब कैसे करेंगे? तो जिस कमरे में किराए पर रहता था उसी कमरे के एड्रेस पर विजिटिंग कार्ड छपाया और फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई मैंने CA का ऑफिस चालू किया है, कुछ काम हो तो बताना। अब देखो 1000 हाथ वाला कैसे मदद करता है। अभी तक हमने कहानियां सुनी भक्ति में महिमा की 1000 हाथ वाला, लेकिन प्रैक्टिकल उसकी मदद का अनुभव करने का ये संगम युग है, ये ज्ञान है जब हम प्रैक्टिकल उसकी मदद का अनुभव कर सकते हैं। तो 20 दिन निकला ऑफिस शुरू किए को और मुझे इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर हो जाता था। मैंने कहा वाह बाबा वाह, 20 दिन में ही इतना काम मिल गया जो पूरे साल की सैलरी, लोगों को तो एक एक दो दो साल तक खर्चे निकलते हैं। मैं थैंक्स कर रहा था बाबा को। 10 दिन और निकला और अहमदाबाद का एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आया और मुझे कहा कि ललित भाई आप मेरी ऑफिस आना। मैं उनकी ऑफिस गया, कहा देखो मेरे पास बहुत काम है तो आप मुझे पार्टनरशिप में ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा कि अब पुरानी फर्म है, पार्टनरशिप में ज्वाइन करने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है, उनको कुछ कैपिटल दो तब वो गुडविल का पैसा दो तो ज्वाइन करें। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मैं कैसे आपकी फर्म ज्वाइन करूं? बोले नहीं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैठो आप ये सेवा ऑडिट शुरू करो, इसी महीने से आपको इतना % शेयर में दे दूंगा। मैंने कहा मैं आपको शाम को बताऊंगा। मैं फिर दीदी के पास गया कि दीदी ऐसी ऑफर है पार्टनरशिप की, मैं ज्वाइन करूं? दीदी ने कहा हाँ ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन किया। अब देखो कमाल, जिस महीने में मैंने ज्वाइन की उसी महीने में वहां एक नया सोर्स ऑफ इनकम शुरू हुआ, नई इनकम। उसमें से मेरा शेयर भी मुझे बहुत बड़ी रकम मिलती थी हर महीने। 8-9 महीने में बहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए वो इकट्ठा हो गया। मैं अगर नौकरी करता तो 5 साल तक भी वो पैसा इकट्ठा नहीं होता। तो कैसे बाबा ने युक्ति से नौकरी छुड़ाई, खुद का प्रैक्टिस किया और 8-9 महीने में ही वो सारा शादी का पैसा इकट्ठा हो गया और एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छा लड़का मिल गया, धूमधाम से शादी हुई। पिताजी बोले इसके पास पैसा कहाँ आया, ये तो नौकरी भी छूट गई इसकी, तो अभी अभी तो ऑफिस चालू किया है, इतना पैसा ये लोन पे लाया या कहाँ से लाया? क्योंकि हजार हाथ वाला उनको तो नहीं दिखाई देता है ना, हम तो अनुभव करते हैं कि हमारे साथ है, लेकिन उनको तो नहीं पता कि कैसे हजार हाथ वाले ने मदद की। जब शादी पूरी हुई, सब बैठे थे घर में, तो लड़के के पिताजी ने हमारे पिताजी से पूछा कि हमारा कोई परिचय नहीं है दोनों परिवारों का आपस में, फिर भी आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं, आपको पता है क्यों ले जा रहे हैं आपकी लड़की को हम? तो हमारे पिताजी ने कहा बताइए क्यों ले जा रहे हैं, कि जब पहली बार आप और ललित जी लड़का देखने के लिए हमारे घर आए थे, तो ललित जी का जो परिचय हमें प्राप्त हुआ, तो मुझे लगा कि जिस घर में इतना धार्मिक स्वभाव वाला, अच्छे गुणों वाला भाई हो, उसकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे घर को संभालेगी, इसलिए हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं। अब मेरे पिताजी ने क्या ताना कसा था कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो इसलिए तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करता, और बाबा ने रिप्लाई क्या कराया कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए इसके बहन को हम ले जा रहे हैं। ये भगवान के काम करने का तरीका है कि जब हम कुछ सोचते हैं और भगवान जो है वो कुछ अलग तरीके से कराता है, लेकिन विश्वास, उसमें विश्वास हो और निश्चय हो कि वो मदद करेगा तो वो 100% करता है। लेकिन एक शर्त रखिए, जब मैं भक्ति में गीता का पाठ करता था तो एक श्लोक से मैं भक्ति में ही समर्पित हो गया था भगवान पर, वो श्लोक था अनन्यस चिंतयंतो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। इसका अर्थ है भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, शर्त क्या है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन यानी मुझे याद करेगा, उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसका योग क्षेम मैं वहन करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप पक्का कर लेना कि ये भगवान की गारंटी। योग क्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति करना, प्राप्ति की रक्षा करना। तो मैंने कहा भगवान गारंटी दे रहा है कि आपका सारा काम मैं करूंगा, एक शर्त है केवल, क्या शर्त है, अनन्य भाव से मुझे याद करना। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा सौदा है, हम केवल उसको याद करेंगे वो हमारा सारा काम करेगा, और मैंने उसको स्वीकार कर लिया और तब से मैं ये प्रयोग कर रहा हूं कि जो काम है उसको सौंप देने का बस, और वो करता है, सब कुछ करता है। मैं जिस कमरे में किराए पर रहता था वो एक बीके परिवार ही था, नीचे वो और उसकी युगल रहते थे, ऊपर मुझे किराया दे रखा था, उसकी बहन का पोर्शन था, वो बहन गांव रहती थी तो मुझे किराया दिया हुआ था। एक दिन मुझे वो भाई बोले कि ललित भाई वो बहन के पोते का यहाँ कॉलेज में एडमिशन हो गया है, वो 15 दिन बाद आएगा सामान लेके, तो आपको कमरा खाली करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर बाबा के कमरे में गया, बाबा को बोला बाबा कमरा खाली करना है आप देख लेना, मैं निश्चिंत हो गया बोल के। देखो किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपते हैं ना तो उसको फॉलो अप करना पड़ता है, भाई हो जाएगा ना, कोई मदद चाहिए तो बताना, कहां तक हुआ, कितना हुआ, ऐसा पूछते रहते हैं। भगवान को काम सौंपने के बाद सोचना भी नहीं पड़ता है, एक भी बार रिमाइंड कर, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, जो सारी दुनिया चला रहा है उसके लिए हमारा काम करना कितना बड़ी बात है, वो जरूर करेगा। तो इस प्रकार से मैंने बाबा को सौंप दिया ये कमरे के लिए, मैं कोई कमरा देखने नहीं गया, वो भाई ने 2-3 कमरे देखे लेकिन पसंद नहीं आए तो छोड़ दिया। 13 दिन गुजर गए, 14वां दिन था लास्ट दिन, तो मैं मुरली क्लास करके नीचे उतरा तो दीदी ने कहा कि ललित भाई आपको कमरा चेंज करना है। मैंने कहा जी दीदी। बोले कब करना है? मैंने कहा आज ही करना है। कहा देखा कहीं? मैंने कहा नहीं देखा। हंसने लगे दीदी कि कमरा चाहिए, आज ही चाहिए, देखा भी नहीं और चिंता भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि 1000 रुपया लेके गए मार्केट में से कमरा खरीद के लेके आ गए, देखना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन इसके चेहरे पे कोई चिंता भी नहीं है। वो हंसते हंसते अंदर गए, अंदर से एक किचन लेके आए जिसमें 8-10 चाबियां थी, लाके मेरे हाथ में रखा कि ये एक बंगलो है, 3 मंजिला, 8-10 कमरे हैं, पूरा खाली पड़ा है, आप जो है इसको यूज करो। मुझे कितना चाहिए था? 1 कमरा। बाबा ने क्या दिया? 8-10 कमरों का पूरा बंगला ही दे दिया। हमारे कमला दीदी को याद होगा जो कन्याओं का हॉस्टल था, वो खाली था पूरा, तो वो मुझे दे दिया। लेकिन कब दिया? लास्ट दिन, तब तक मेरे निश्चय की परीक्षा कि मैं कितना हलचल में आता हूं, कितना क्या होता हूं, लेकिन मैं भी मजबूत, मैं भी उसके ऊपर छोड़ दिया, तेरे को जो करना है करा, मैं निश्चिंत हूं। ऐसे ही भगवान पर अगर हम विश्वास रखते हैं और भगवान की याद में रहते हैं तो हर कार्य वो करने के लिए बंधा हुआ है। आपने कितनी अव्यक्त वाणियों में सुना होगा जब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा बोझ लेने आया हूं, तुम मेहनत नहीं करो, तुम मोहब्बत में रहो, ये टोकरी जो है सिर पर वो मुझे दे दो। और बाबा ने इंग्लिश वर्ड यूज किया, यूज मी, किया ना बाबा ने कि यूज मी। मैंने कहा जब भगवान स्वयं कह रहा है तो करके देखे ना प्रयोग, ये संगम तो प्रयोग करने का समय, सतयुग में जाने के बाद तो प्रारब्ध है, यही भगवान के साथ के प्रयोग करने का समय है, तो हम प्रयोग करें, बस उसकी याद में रहें और बाकी सब वो काम करेगा। एक गुरुजी थे, गांव में कथा कर रहे थे, तो भगवान की बहुत महिमा की कि आप नदी में जा रहे हो और भगवान को याद करेंगे तो नदी में भी रास्ता हो जाएगा, आप पार हो जाएंगे, प्रहलाद को भी बचा दिया भगवान ने, ऐसे ऐसे बहुत महिमा की भगवान की। तो फिर कथा पूरी हो गई, सब अपने अपने घर गए। शाम को वो गुरुजी नदी पर नहाने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कोई एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है। वो उसके नजदीक गए, नजदीक गए तो देखा पेड़ के नीचे ऐसे तलवार खड़ी है और व्यक्ति जो है वो चढ़ रहा है उतर रहा है। तो गुरु ने उनसे पूछा, भाई तुम चढ़ रहे हो उतर रहे हो क्या बात है? तो महाराज आप भूल गए। तो कि क्या भूल गए? कि आज कथा में आपने कहा था कि आप पेड़ से नीचे गिरेंगे, नीचे तलवार भी होगी तो भगवान आपको बचा लेगा। तो महाराज ने कहा कि हाँ मैंने कहा तो था कथा में, तो मैं वही प्रयोग कर रहा हूं। तो कि अच्छा, तो फिर आप ऊपर चढ़ के तलवार पर गिरो ना, नीचे उतरते क्यों? तो उसने कहा मैं गिरने के लिए चढ़ता हूं, लेकिन जब ऊपर से तलवार देखता हूं तो मन में विचार आता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा बचन। गुरुजी ने कहा वो नहीं आएगा, जहां संशय है वहां वो नहीं है, लेकिन जहां निश्चय है वहां सर्वशक्तिवान हाजिर है। ऐसे ही अगर हमारा निश्चय है कि स्वयं परमात्मा पिता हमें देवी देवता बना रहा है, सर्वगुण से संपन्न बना रहा है, तो निरंतर उसकी याद में रह के निश्चय रखने से, उसको सब कुछ सौंप देने से वो करने के लिए बंधा हुआ है। मेरे जीवन के ऐसे कई अनुभव है कि 2 दिन तक मैं सुनाऊं तब भी पूरा नहीं हो, इतने जीवन के अनुभव है, इतने बाबा के साथ प्रयोग किए और हर क्षेत्र में प्रयोग किए, सरकारी काम में भी, इनकम टैक्स में भी, हर जगह बाबा ने ऐसे ऐसे वंडर कराए हैं। पर यही है कि उसको याद करना पड़ता है और सौंप देना पड़ता है, बस सौंप के याद में रहें हम और वो जो कहता है वो हम जीवन में धारण करें तो सब कुछ सरल हो जाता है। सदा वो हमारे साथ है, बस अनुभव करें और उसकी मदद लें। अच्छा, ओम शांति। ये तो भागवत की कथा है, खत्म ही नहीं हो, चलती रहती है। इसके साथ का 1993 में I'm